अष्टम ज्ञान साधन। भक्ति विनोद ठाकुर के संग्रही हम लोग कल जिस श्लोक का अनुशीलन कर रहे हैं, निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाख्यान। श्लोक में पीछे रह गया, श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का यहाँ पर वर्णन कर। हमने सोचा था जन्माष्टमी से पहले ये पुस्तक समाप्त हो जाए, किंतु संभव पर नहीं है। अभी इसमें 8-10 श्लोक हैं, 6 महीने से हम लोग करीब करीब चेष्टा कर रहे हैं, विशेष में गड़बड़ी हो जाती है, तो सोचा था इसमें कर देंगे।
10 मास के लिए 11 महीने चल रहा है,
ठीक है। फिर हम लोग पीछे जन्माष्टमी के बाद में पुरुषोत्तम धाम से लौटने के बाद में बाकी जो रह जाएगा उसी का। कल नगर संकीर्तन निकलेगा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। कृष्ण के चरण कमलों का या राधा जी के चरण कमलों का ही वर्णन पाया जाता है। अंगों में श्रेष्ठ मुखारविंद है, यह ठीक है। विश्व के लिए भी अंध जड़ आतुर सबके लिए चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण के चरणों की ही नाम की नौका लेकर के आए। अनादि काल से नाम की ये नौका है कृष्ण के चरणों की। इसलिए जितने भी लोगों ने, जितने भी रसिक वैष्णव हैं या साधारण लोग हैं, ब्रह्मा से लेकर सब ने चरण की ही वंदना है। आशा महो
चरण
वंदे नंद ब्रज स्त्रीना पादरेणु जत पाद क्या है पाद पल्लव नहीं श्रीमद भागवत ये नहीं, हाँ वो भी है इसमें केवल पद ही पद है, साफ पद है। भगवान को पाने के लिए उनके चरणों का आश्रय लेना और भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए भक्तों का चरण का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। बिना कृष्ण के जो प्रिय हैं, भक्त हैं, परिकर हैं, या इसमें मध्यम श्रेणी के जो भक्त हैं, मध्यम
आनंद वृंदावन चंपू के पहले श्लोक में वंदे कृष्ण पदार बिंद जुगलम जस्मिन कुरंग दृशा भक्षण जय प्रणय कृत किल सती स्निग्ध अंग राजस्व काश्मीरम तलसोणी मोबरी तना कस्तुरिकाम निजुमा श्रीखंडम नखचंद्र कांति लहरी निर्व्याज मातन।
सर्वत्र इसी का वर्णन, गोपियों के गोपी गीत के अंत में पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज। देखो कृष्ण की चरण की जितनी भी महिमा है सबने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार में वर्णन किया। बिल्व मंगल भी अपने अधिकार के अनुसार में वर्णन किया। कृष्ण के चरण कमलों की जितनी महिमाएं हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने वर्णन किया और लोगों ने वर्णन किया, वो अपने भाव के अनुसार में वर्णन करेंगे। किंतु सनातन गोस्वामी जी कहते हैं जो भी वर्णन करे उस वर्णन में ब्रज का यदि भाव आया चरणों के साथ में तो वो सबसे अधिक, और उसमें भी सबसे अधिक कौन है यदि गोपियों से संबंधित तो चरण है तो अच्छा। इसलिए कृष्ण का संबंध किससे होना चाहिए, गोपियों का संबंध होना चाहिए। तो वो कृष्ण की चरण की सबसे अधिक महिमा होगी। इसीलिए सबसे चरण की महिमा कब है, अभी आगे बतलाया ना, यत्ते सुजात चरणम वरुहम गोपीनां नैवं कुमेनं नैनोत्पलार्चित तनुं गो गोपसंघावितम्। इसलिए जितनी भी महिमाएं हैं कृष्ण के चरण कमल की, सबसे महिमा वही है जिसको गोपियां अपने अंगों पर धारण करती हैं कृष्ण के चरण, और उनको अपने कुमकुमों से रंजित कर देती हैं। इससे बढ़कर के कृष्ण के चरण कमल की और कोई विशेषण नहीं हो सकता, और कृष्ण के चरणों की और इससे बढ़कर के कोई महिमा नहीं हो सकता। कृष्ण के चरणों से या कृष्ण के अंशों के चरणों से जो गंगा जी निकली हैं, ये भी तो कृष्ण की महिमा है, जो कि भुवन त्रय को पवित्र करती है। ऐसी महिमा जो गंगा में बाढ़ आने पर एक सर्प उसमें डूब रहा था, उसके बिल में वो था, और पानी अब आएगा जाएगा एकदम उसके ठीक नाकों नाकों भर गया। अब सब चिंता कर रहा है और देख रहा है ऐसे, अब क्या करूं, अब तो इसमें पानी आएगा मरूंगा, अब कहाँ जाना चाहिए, कुछ उच्च भूमि में जाना चाहिए। इतने में गरुड़ आकाश उड़ रहे थे, उनकी नज़र उस पर गई और देखते ही गरुड़ जी एकदम झपके और झपट करके अपने पंजों से उसे पकड़, अब पकड़ करके ऐसा खींचा जोर से, उसके तो प्राण हवा में उड़ने लग गए। आज जिस समय उड़ने लगे तो उसकी पूंछ पानी में, इतने में उसका प्राणांत हो गया, शरीर से उसकी आत्मा का त्याग हो गया। और साथ ही साथ मरते समय गंगा जी का स्पर्श मिलने से क्या होता है, वो एकदम चतुर्भुज बन गया। साथ ही साथ गरुड़ ने देखा जी ये तो चतुर्भुज बन गया, तो फिर उतर आए आकाश से और उसको छोड़ दिया, और उसके आकर के अपने पीठ पर उसे चढ़ा करके बैठ। गंगा के चरण की महिमा कितनी है, शंकर जी लुब्ध हो करके इसको सब समय अपनी जटाजूट में धारण करते हैं, एक बूंद भी नहीं कहीं इधर उधर कर जाए। शंकर जी की इसी की महिमा है, उन चरणों की धोवन को सब समय अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये भी महिमा है, किंतु ये महिमा फीकी पड़ जाती है कहाँ, ब्रज में। ब्रज में उनकी ये सब महिमाएं बहुत दूर चली जाती है, वहां पर सबसे यही उनकी है। तत्ते सुजात चरणम वरुहम स्तनेशु भीतासने प्रिय गदीम कर्कशेशु अथवा पूर्णा पुलिंदा उर्गाय कुदिपजराग सिकुं कुमेन रचिता गयिता स्तन मंदिर। यही उनकी सबसे अधिक, कृष्ण इसी के बस में।
हंसदूत में ऐसा वर्णन है कि चिंतन में कृष्ण के चरण कमल को सबसे पहले चिंतन किया जाता है, और चिंतन करके मुखारविंद आश्रय होता है हमको, और राधा जी के सबसे पहले मुखारविंद का दर्शन होता है, इसके बाद में चरण कमल आश्रय होता है, ऐसा क्यों?
सब समय ये समझो, नीचे से चरण से, चरण के बिना वो हो नहीं सकता। चरण किसी के पर आश्रित नहीं है, मुखारविंद आश्रित है
चरण के ऊपर,
चरण के ऊपर में। चरण न रहे तो मुखारविंद टिकेगा कहाँ, गिर जाएगा। इसलिए सब लोगों ने चरण की को ही सबसे पहले आधार मान करके चलते हैं, इसलिए ऐसा चल तब वो रूप का जो है मुखारविंद वो टिकेगा हृदय, तब स्थायी होगा, नहीं तो ठहरेगा किस पर। इसलिए जितने भी भागवत में देखो सब जगह वंदे अहम नंद ब्रज स्त्री ना आशा महो चरण ऋण, ब्रह्मा जी का तद भूरी भाग्यमी शायद इसमें है, इसमें और जत्पाद पलाश भक्त्या इत्यादि समय वर्णन किया है। तो निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलाश पदाभिया कमल विपिन बीची गर्भांग कुशाभिया, प्रणमद अभय दान प्रौढ़ी गाढ़ा दाभ्यम किमप भवतुं चेता कृष्ण पादाभ्याभ्यं। किमप, कल हमने किमप की व्याख्या की हमने कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि के माध्यम से, टीकाओं से मैंने कुछ कुछ किया। किमप मैंने वही ब्रह्मानंद इत्यादि का वर्णन करके और कहा न जाने कृष्ण के चरण कमलों में कैसे एक माधुर्य की कादंबिनी माधुर्य की स्वतस्वरी प्रवाहित हो अपने आप, न जाने उसमें कैसे उन्मादना है, उसमें कैसा आनंद है। मैं इसको नहीं कर सकता, हमारे लिए अनर्वचनीय है, किंतु मैं चाहता हूं कि वही जो आनंद है हमारे हृदय में सब समय नित्य निरंतर प्रवाहित होता रहे, वही मालूम कैसा, उसी के लिए बताया। मैंने इसके संबंध में बताया था, कुछ थोड़ा सा रह गया था, निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीला स्पदा। यहाँ पर नित्य लीला लक्ष्मी, लक्ष्मी जो कहा यहाँ पर श्रीमती और सबको तो शोभा के रूप में लिया, किंतु अंतिम जो इसका जो अर्थ किया वो श्रीमती राधिका के लिए, इसी के लिए उन्होंने कृष्ण करणामृत का पहला श्लोक लिया और उसमें वो बतलाया, क्या है वो, कल सीता जी का उपमा देकर के बतलाया था कि नहीं बतलाया,
नहीं बतलाया,
नहीं। लीला स्वयंवर रस किसको कहते हैं, श्रीमती राधिका जी कृष्ण के चरणों को देख करके महान उत्सव उनके हृदय में हो जाता है। जैसे देखो एक सीता जी का उदाहरण देकर के हम लोग अभी जनकपुर में चलिए, आज जनकपुर में चारों तरफ में बहुत शोर मचा हुआ है, विश्वामित्र के साथ में दो राजकुमार हैं, अद्भुत श्याम गौरी जोड़ी है, आज तक जनकपुर में ऐसा कोई नहीं आया, ऐसा अतिथि कभी नहीं आया। राजा जनक जी को ज्ञान नहीं है, राजा जनक जी कैसे हैं, महाज्ञानी हैं, उनको वहाँ की स्त्रियाँ कर रही हैं, इनको अकल से संबंध नहीं है। इसने न जाने क्या इस बूढ़े अवस्था में इसने प्रतिज्ञा कर दी, सीता जी की शादी उसी व्यक्ति से होगी जो शंकर जी का यह धनुष उठाकर
प्रत्यंचा चढ़ाएगा
और प्रत्यंचा चढ़ा देगा और इसको उठा लेगा। बड़े बड़े इंद्र इत्यादि देवता है, रावण भी आया रात में और अजमाने लगा, जब वो धनुष उठाया थोड़ा सा तो एक तरफ से एक कोना थोड़ा सा उठाया और इतने में छिटक गया धनुष हाथ से और उसी के नीचे दब गया। अब धनुष दब गया तो अब उठ ही नहीं सके, वहाँ करने लग गया, शंकर जी को स्मरण किया, कहिए तुम यहाँ पर क्यों आया, शंकर जी बोले जाओ आज बच गया, हमको स्मरण कर लिया, किसी प्रकार से धनुष को थोड़ा सा ढीला कर दिया, निकल करके भागा दिया, अब नहीं आएंगे यहाँ। 10,000 भूप एक ही 12, 10,000 बड़े 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 बलवान लोग एक साथ में उठाने लगे, नहीं उठा। देवता लोग भी सीता जी को देख करके ललच रहे, नहीं उठा सके। अब ये करिए, ये इतनी सुंदर जोड़ी आई है, उसमें जो श्याम लड़का है अद्भुत है, आज यदि वो प्रतिज्ञा नहीं बूढ़ा किया होता तो आज सभी मिलकर के हम सीता के साथ में उसकी शादी कर देते, आज उसको कोई समझाने वाला नहीं है जो प्रतिज्ञा छोड़ दो, किंतु वो तो प्रतिज्ञा क्या किया है। जैसे दशरथ जी कहते हैं रघुकुलरी सदाचर्य प्राण जाई बरु। तो वैसे इन्होंने भी प्रतिज्ञा कर दी है, प्राण जाएगा किनको हमारा, अब ये प्रतिज्ञा सीता जी कुंवारी रह जाए, मैं समझ गया इस पृथ्वी में कोई वीर नहीं, वीर वीर वही मैं जा, अब कोई पृथ्वी में कोई वीर नहीं, मैं समझ गया। लक्ष्मण जी उसी समय उठ करके खड़े हो गए, वीर नहीं है सूर्य वंशी, बच्चों के साथ भी सामने रहते हुए तुम ऐसी कहते हो, अभी कहो तो मैं पृथ्वी को लेकर के गेंद की भांति उड़ जाऊं और इस भूमंडल को मैं पीस डालूं, ये धनुष क्या बात है। विश्वामित्र जी ने आंखों के इशारे से और रामचंद्र जी ने उसको बैठा दिया, उसके अधर कांप रहे हैं, वहां की नारियां सब देख रही हैं, ये कैसे बूढ़े को मनाया जाए। सब जगह इसी की चर्चा चल रही है। दूसरा दिन आया, रामचंद्र जी बगीचे में गए, वहां से देख करके आए, सवेरे विश्वामित्र जी ने कहा जरा धनुष को भी तो देखाना है, धनुष यज्ञ देखना के लिए हम लोग आए हैं, देखो तो जो कैसा धनुष है। रामचंद्र जी भी मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी को साथ लेकर के और उनके चरण की धूली लगाई विश्वामित्र, अचरण धूली लगा करके मानो इसी के बल पर चल रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड जी की धूली को धारण करके पवित्र हो जाता है, आज वो विश्वामित्र की चरण धूली ले रहे हैं और ले करके वहां पर पहुंचे। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की तरफ में इशारा किया, लक्ष्मण जी वैसे सरासन जैसा होता है ना, वीरासन, वीरासन से पृथ्वी को दबा दिया कि कोई समझ सका कोई समझ नहीं सका, और नहीं तो धनुष के साथ साथ में पृथ्वी भी उठ जाएगी, इसलिए उसको दबा दिया। इन्होंने रामचंद्र जी पलक झपने के पहले एक सेकंड नहीं लगा, कब धनुष को उठाया, कब पतंजा चढ़ाया और कब धनुष टूट करके त्रिखंडों में महान शब्द हुआ, पृथ्वी कांप उठी, इधर तो सब लोग भयभीत हो गए, किंतु वो जो जनकपुर की जो महिलाएं थी आनंद का एकदम समुद्र बह गया उनके हृदय। आज भगवान ने हमारे मन की मुराद, सीता जी को उस समय कैसा लगा होगा, सीता जी को सभी लोग श्रृंगार कराने लगे, आनक एकदम सिर तक उनका श्रृंगार, दुल्हन सजाया, हाथों में बरकी माला दी, सीता जी जब चल रही हैं दोनों तरफ से सखियां पकड़ी हुई हैं, सीता जी का आनंद के मारे हृदय कांप रहा है, हाथ भी कांप रहे हैं, फूल की माला भी कांप रही, ऊपर देखती हैं कनखी से थोड़ी सी राम की तरफ, कोई देख न लीजिए मैं उनकी तरफ में देखी हूं, कितनी उमंग कितनी उछा। और उसी समय में जब धीरे 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 एक एक पग सखियां को लेकर चलती, अब चलने की सामर्थ्य भी नहीं, जितनी निकट जा रही है जिसके लिए सब कुछ, और उसके निकट जाते ही और भाव में आविष्ट हो गई, हाथ नहीं उठा सकी तो वरमाला के देखे, सख्य ने अपना हाथ से जोर लगा करके उनके हाथ को ऊंचा किया और उनके गले में दिया। उस समय में स्वयंवर में जब उनके गले में माला दे रही होंगी, उस आनंद की कल्पना तो कीजिए, इसको कहा जा सकता है उस आनंद का कोई वर्णन कर किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने कहा वाल्मीकि रामायण में भी, आंख में वर्णन की शक्ति नहीं और जिह्वा में देखने की शक्ति नहीं, वर्णन कब करें, यहाँ पर कवियों की जितनी कल्पनाएं उपमाएं हैं सब कोई उपमा काम नहीं है। तलीला स्वयं बरसम, ये तो राधा उनका तो एक बार हुआ ना स्वयंवर में, और राधिका जी का क्या होता है, नित्य ही लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री, राधिका जी नित्य नवा नवाय मान में वो देखी है,
एक उदाहरण पूछ सकते हैं,
कोई उदाहरण ही नहीं है जगत, सब वो झूठी हो चुकी है। यदि कोई उपमा भी है ना, सब झूठी हो गई है, ऐसी उपमा है, इसकी कोई उपमा नहीं। तभी उन्होंने थोड़ी सी कमल की उन्होंने जो उपमा दी, उसी के लिए ये कह रहे हैं। ओह, हमने न कहा ना, यहाँ पर हमने जो कहा, बहुत चेता कृष्ण पादाम पूजा ध्यान, कृष्ण के चरण कमल, ये जो पादाम्बुज, अम्बुज माने कमल, उपमा दी, ये गब्दी से दी, किंतु हृदय से निकल गया। किंतु उपमा कमल के साथ में कृष्ण के चरणों को दी जा सकती है कि नहीं, जो कि लीला स्वयंवर रस है, किसके लिए? लक्ष्मी के। यदि इसके बदले में प्रबोधानंद सरस्वती होते तो वो क्या लिखते, वो क्या लिखते, वो लिखते ये, वो लिखते वंशी करान्निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रश्चंत पीत वशनम वजराज सोनो जस्या कटाक्ष सरघात निमुच्य तस्य तंग राधिका परचरामि कदा से यतकिं करीष बहुशा खलुका गुबानी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंडम जस्या कदार स्निधे विश्वानुजाया पुण्य भवनांगन मार्गनी। मार्जनी किस लिए होना चाहते हैं? किस लिए मार्जनी होना चाहते हैं? मार्जनी के बहाने भी वहां पर पहुंच जाए तो वो देखेंगे, क्या देखेंगे? कृष्ण की कंकरियों के चरणों में वो पर ब्रह्म बार बार प्रणत हो रहा है, प्रार्थना करता है कि मुझको उनसे मिलना है, तो वो ये तरह तरह के भक्त हैं, तरह तरह से आस्वादन करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग साधु को उचित बिल्ल मंगल जो बतला रहे हैं, बिल्ल मंगल अपने प्रेमावेश में चरण चरणों की उपमा कमल से दे रहे हैं, किंतु जब चरणों की विलक्षणता के प्रति इतनी महिमा, विशेष करके गोपीनाथ कुछ कुमकुमे ने इत्यादि उपमा जब के उनके हृदय में आया, तब उन्होंने सोचा कि मैंने भूल किया जो कमल के साथ में इसको उपमा दी। क्यों? ये जो अभी जो तीन जो विशेषण बतलाए, कोई भी विशेषण कमल में नहीं है। निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पद ये कमल में नहीं। कमल विपिन बीथी गर्भ सर्व सर्व कषाभ्यम क्यों नहीं है, इसको अभी यह पर बतला रहे हैं, इसके लिए बतला रहे हैं। देखो पहली विशेषता उन्होंने बतलाई, अब कमल में और चरण दोनों में हम देखेंगे। निखिल लिखल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलाभ्यम कमल इस जगत में है, एक ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, ऐसे ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं, अनगिनत अनंत, वो अंडे के रूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड कर्णाधिशायी के विष्णु के एक एक लोम कूप में होते हैं, और उनके लोम कूप कितने हैं, और उसमें ये लोग उनमें से कुछ निकल करके कर्णाब्धि समुद्र में विशाल विशाल रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, तैर रहे हैं। कितने ब्रह्मांड है इसका कोई भी आकार नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं गिन सकते हैं, इतने हैं। और उस ये सब हैं क्या, प्राकृत और अप्राकृत हो, इन लोगों में जितनी भी शोभा संपत्ति ये सब लक्ष्मी जी का एक कटाक्ष मात्र है। जो वृंदावन में जिसमें बतलाया गया ना पहला श्लोक
चिंतामणि
नहीं इकतीसवा का
जयति
अधिकम जन्म ना प्रजा श्रयति इंदिरा। सब समय ये लक्ष्मी जी वृंदावन की सेवा करती है। कौन लक्ष्मी जी? जो कि सबकी आराध्य बनी हुई ब्रह्मा शंकर सबको ये आशीर्वाद देने वाली मनोकामना पूर्ण करने वाली लक्ष्मी आज वृंदावन में सेवा कर रही है। कुंजों कुंजों में वृंदावन की धूली कणा की सेवा कर रही है। तो ये जितनी संपत्ति है ये शोभा है।
वहाँ पर देखा है कि वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी सर्व पूज्या आज वृंदावन में आकर के दासी बनी सेवा कर रही है।
वही तो वृंदावन की सेवा कर रही
है।
एक नहीं सहस्त्र वहाँ की गोपियाँ इन सहस्त्र सहस्त्र लोग लक्ष्मियों से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न है। वो लक्ष्मी जी सब समय कृष्ण के प्रकाश के वैभव प्रकाश जो नारायण उनके चरण कमलों का संवाहन करती हैं और सब समय अपने हृदय में धारण करती हैं। कृष्ण का नहीं उसके लिए लोग ललच करके रह जाती हैं। ये नाग पत्नियों ने ऐसा वर्णन किया ललच करके रह जाती हैं। वृंदावन में उनको अधिकार नहीं। कश्याम भाव अश्चन देव बिंदु बस यहीं तक। लक्ष्मी भी वृंदावन के राशि इत्यादि में नहीं आ पाती हैं। तो ये सब कृष्ण के चरण जुगल जो हैं ऐसी ऐसे लक्ष्मी जी कितनी लक्ष्मी इनकी दृष्टि से अनगिनत लक्ष्मी गोपियों को सब लक्ष्मी बना करके वो ये कहते हैं इन गोपियों के लिए कृष्ण के चरण कैसे हैं आस्पद है। ये सब उनकी सेवा करती हैं। किनकी? कृष्ण के चरण कमल के नख को उसके प्रकाश का निर्मंचन करती हैं अपनी कोटि कोटि प्राणों से। जैसे राधा मुकुंद पद संभव घर्म बिंदु निर्मंचनो उपकरणी कृत देह ललिता जी के लेकर कोटि कोटि प्राणों को राधा कृष्ण के चरण कमलों पर शोभा पर मार दिया। ऐसे इनके चरण कमल हैं। गीता में भी कहते हैं ये विश्व की जितनी भी विभूतियां हैं वो कृष्ण के चरणों की एक एक चरण है। तीन तीनांश विभूति जो है त्रिपाद विभूति वैकुंठ से लेकर के गोलोक वृंदावन और एक पद में आंशिक विभूति ये समस्त ब्रह्मांडों की जग जग विभूति स्तन सप्तम श्रीमद ऊर्जितम मेरे भगवान तत्त एव अवगच्छध्वम मम तेजो अंश संभव। ये कृष्ण के चरणों के कमल के ये तेज के समान हैं ये सब। किंतु ये लक्ष्मी जी चंचला हैं इस विश्व में और ये नित्य रूप में स्थिर कहाँ रहती हैं? नारायण जी के चरणों में। कृष्ण के चरणों के लिए तो ललचती हैं उन्हीं के चरणों में नित्य स्थिर है। श्रीमद्भागवत में उपाख्यान है समुद्र मंथन के समय में बहुत से चीजें निकली 14 रत्न उसमें से एक कमला जी हाथों में कमल लिए हुए उसमें से निकली और देखने लगी पति ढूंढ रही है
किसके गले में माला
किसके गले में वो माला दें कमल फूल की माला कभी मलिन नहीं होने वाली। शंकर की देखा शंकर की तरफ में देखा ब्रह्मा जी के तरफ में देखा इंद्र की तरफ में देखा और देवताओं उनमें दोष ही दोष नजर आए किसी में कोई गुण नजर नहीं आया। यदि गुण भी नजर आया तो थोड़ा सा गुण और बाकी सब दोष, इसलिए किसी के गले में भी माला नहीं दी। प्रतीक्षा कर रही थी इधर, इतने में ही देखा जी गरुड़ जी वहां पर उपस्थित हुए और गरुड़ के पीठ पर वो प्रभु जी पधारे, उसी समय देख करके उनके गले में। इस तरह से भी देखते हैं कि लक्ष्मी माने हैं और किसी का आश्रय नहीं करती, चंचल हैं, किंतु वही लक्ष्मी जी उनके चरणों में सब समय स्थिर है। ये जो चंचल लक्ष्मी जी हैं उनका ये प्रकाश है, वो यथार्थ लक्ष्मी जी नहीं है। जैसे माया की सीता जी, ऐसे ये लक्ष्मी जी के ये प्रकाश जो संसार में एक कभी एक मिनट रहती है, कभी कुछ दिन रहती है, कभी उसको छोड़ करके उसको पाते, किंतु कृष्ण के चरणों में माने उनके वैभवों के चरणों में नित्य रूप में स्थिर रहती हैं। इसलिए समस्त शोभाओं की संपत्ति की मूल जो आधारशिला है उनके चरण कमल है। दूसरी विशेषता इन्होंने बतलाया सौंदर्य माधुर्य, पहला हुआ ऐश्वर्य के शोभा इत्यादि, दूसरा बतलाया सौंदर्य के माधुर्य की, सौंदर्य की ये कमल में नहीं है, जो कृष्ण के चरणों में समस्त लीलाओं का आस्पद है ये कमल नहीं है, कृष्ण का चरण कमल है। इसलिए कमल की उपमा हमारा देना, यदि ऐसी बात होती सनक सनंदन सनातन इत्यादि थे, जगत के किसी कमल के फूल के द्वारा आकर्षित हुए, सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए, वो लोग नहीं आकर्षित हुए। इसलिए कह रहे हैं कमल का जो वन है वो रूप रस गंध और स्पर्श के द्वारा पंचेंद्रियों को अपनी तरफ में आकर्षित करता है, बद्ध जीवों के लिए, मुक्त जीवों के लिए या साधक जीवों के लिए नहीं। उसमें कमल में लक्ष्मी का निवास भी है, इसलिए कमल कहते हैं, कमला से यहाँ पर कमल, और हाथों में भी कमल लेकर के रखते हैं। किंतु इन कमलों के भी गर्भ को खर्ब करने वाले कृष्णचंद्र जी का जो चरण कमल है, ललाई में भी, सौंदर्य में भी, सौगंध में भी, रस में भी, सब विषय है, इसलिए इसके साथ भी वो तुलना नहीं हो सकती है। तस्मिन् जयु परमहंस महामुनीनां अन्वेषणीय चरणों चलयन् सहस्ति। कहते हैं मुनि लोग जैसे सनक सनंदन इत्यादि जगत के सौंदर्य को वो नहीं देखते हैं, कमल टमल की तरफ में उनका दृष्टि नहीं जाएगी, वो तो महावितराग थे और ब्रह्म में उनकी निष्ठा थी। ब्रह्मा जी ने कृपा करके देखा कि हमारे पुत्र के रूप में आया है, इस पर कुछ कृपा की जाए, भगवान की कुछ चरण कमलों की महिमा समझे, इसलिए कुछ अपनी शक्ति के द्वारा संचरित करके और उनके भगवान के चरण कमलों में जो ये चंदन मिश्रित तुलसी का जो मकरंद था वो हवा में लगा करके और इनके नाकों तक पहुंचाया, उस मकरंद को अर्थात सुगंध को उग्रहण करके मुग्ध हो गए। कहाँ कहाँ से ये आ रही, ब्रह्मा जी से पूछा गया ये कहाँ से आ रही सुगंध, उन्होंने कहा भगवान के चरण कमलों में अर्पित ये तुलसी जी का ये मकरंद है, बस उसी के अनुसार। और जब वहाँ गए नित्य काल के लिए अपना मन उन्हीं में, जगत का कमल ऐसा कर सकता है, ये कमल के लिए संभव पर नहीं, भगवान के चरण कमलों के। यदि नारायण का ये है तो कृष्ण के चरण कमल, लक्ष्मी जी सब समय उन चरण कमलों की सेवा करती हैं, किंतु आज वो भी पागल हो गई और उनको छोड़ करके नारायण को वृंदावन के बेल वन में आकर के तपस्या करनी है, कृष्ण के चरण कमलों को की सेवा प्राप्ति के लिए करनी है, किंतु अभी तक पाया कि नहीं कोई ठीक नहीं। इसलिए कमल में ये स्निग्धता शीतलता नहीं है, बल्कि कमल में दाहकता है। दाहकता कैसे, रखता, इसलिए ये मत पैदा करने वाला हो। कमल की माला कोई पहन ले खूब सुंदर बन जाए, उसको काम रोग उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगा और उसको ताप देने लग जाएगा, ये उसका उद्दीपक है, काम का उद्दीपक।
और मालती
है,
मालती,
ये सब जगत के फूल ऐसे ही हैं सभी। यदि अपराजित हो तब तो ठीक है, और कृष्ण के चरणों में यदि अर्पित कर दिए जाए तो उनका कुछ मूल्य है, नहीं तो ये काम को बढ़ाने वाले। नमाम ते देव, भागवत श्रीमद भागवत में कहते नमाम ते देव पदारविंदम प्रपन्नता प्रपन्नताप उपशमम एव आतपत्रम जन्मूल एका जतयो अंजसो पुरुषंसार दुःखम बहिरुत क्षिपंती। श्रीमद् भागवत का तीसरे स्कंद का भगवान के चरण कमल तीनों तापों को दूर करने वाला, स्वर्ग का अमृत भी ऐसे ही समझो कि तापों को बढ़ाने वाला है, दुख देने वाला है, किंतु कथामृत जो है इसे कोटि गुण श्रेष्ठ है। उसी तरह से कहते हैं, एक हिंदी के कवि हैं नारायण स्वामी, बड़े रसिक, बहुत रसिक, बहुत से उनके पद हैं, उसमें कह रहे हैं देखो कमल पत्र कैसा है, भगवान के चरण कमल कैसे हैं, कि जुगल चरण बस दस अंगूरियां दसधा भक्ति सुहार नखन ज्योति लक्ष चंद्रमा गयो गगन उड़ा। चंद्रमा जी ने देखा कृष्ण के चरण कमलों की नख चंद्रिकाओं को, और उसे जो चंद्रिका छिटक रही है, चंद्रमा उसको देख करके लज्जित होकर के आकाश में उड़ गए। अतः तो उन नखों की चंद्रिका का सौंदर्य इतना है, माधुर्य शीतलता इस चंद्र में नहीं। कमला, कमल तो काम को बढ़ाने वाला है, किंतु सकाम भक्त भी यदि कृष्ण की भजन, कृष्ण का भजन करता है तो कृष्ण कैसे हैं, कोई सकाम भक्त भजन भी करे, मुक्ति के लिए भी भगवान यदि करता है भगवान का भजन, तो कृष्ण क्या करेंगे, उसको मुक्ति इत्यादि नहीं देते, उसे अपने चरण का अमृत बना कर दे करके और उसका कल्याण करते हैं। यहाँ तक कि ध्रुव जी सकाम उपासक थे, सकाम रूप से उपासना, किंतु भगवान ने कृपा की, उनकी उस इच्छा को भी पूर्ण करके और अपनी भक्ति दे देते हैं। ऐसे कृष्णचंद्र जी के चरण कमल दयालु हैं। कहते हैं कि ऐसे इनके चरण कमल हैं, हनुमान जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, सकृत एव प्रपन्ना प्रपन्नाय तवास्मि चित जाचते अभयम सर्वम भूतभ्यो ददाम्ये तत् व्रतम्। हनुमान जी कहते हैं एक बार भी यदि रामचंद्र जी के चरणों में कोई भगवान के चरणों में प्रपन्न हो गया और अभय जाचना की उनके चरणों में शरणागत हो गया तो उसके दुखों को सदा के लिए हर। बात कब की है, विभीषण आया लंका से, रावण ने उसे लात मारा, तू अभी भी हमको परामर्श देता है सीता को देने के लिए, तू उसी का गुप्तचर है, तुमको भी वध कर देंगे। बस अपने मंत्रियों के साथ में विभीषण रामचंद्र जी के पास में आए, जितने रामचंद्र जी के सैनिक थे देखा, उसको ऊपर में रोक दिया, इसको उतरने मत दो। रामचंद्र जी के पास में गए, बोला जैसे रावण का भाई आया है विभीषण, आपसे मिलना चाहता है। तो उन्होंने बुलाया सबसे पहले सुग्रीव को, सुग्रीव से पूछा जैसे मुझे क्या करना चाहिए, इसे मिलना चाहिए कि नहीं। सुग्रीव बोले जी मत मिलो, क्योंकि यह शत्रु का भाई है, आपका सारा भेद आपसे जान करके खोल करके आपको युद्ध में मरवा देगा, आपकी हार हो जाएगी, इसलिए शत्रुओं से पर विश्वास मत करो। अंगद नल लीन इत्यादि सबको बुलाया। सबसे पूछा किंतु किसी ने नहीं कहा जे बुलाओ। जब हनुमान जी को बुलाए तो हनुमान जी कहा जे प्रभो, आप एक निमेश में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय करने वाले हैं, आपको किस चीज का डर है? आप तो हमारे समझ से उसको बुला लीजिए, शत्रु भी है मित्र भी, आपका क्या कर देगा? एक बार भी कोई अभय याचना करता है तो अवश्य ही आप उनको शरणागति दीजिए। वही इसी को करें, एक बार भी यदि मैं तुम्हारा हूं ये कह दे, कृष्ण तुम्हारा हूं यदि बोले एक बार, कृष्ण तारे एक बार यदि कह दे। महाप्रभु जी कह रहे हैं बुद्धिराज खां कैल श्री कृष्ण विजय तहां ते एक वाक्य आछे प्रेम मोर, कृष्ण नंदन नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, एक वाक्य
बिगाई नो हाथ।
महाप्रभु जी कह रहे हैं उसके वंश का मैं विकृत हुआ, उसने ये कहा नंदन नंदन हमारे प्राणनाथ, इसलिए उसके वंशों के हाथ में ऐसे कृष्ण दयालु हैं। एक बार भी आप लोग कोई भी यदि ये कहें मैं तुम्हारा, जैसा भी तुम्हारा, एक बार यदि हृदय से कहें जरूर आपको ग्रहण कर, यही तो नहीं निकलता है। इसलिए एक बार भी निकल जाए अभयम सर्वभूत, समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करता है। यदि रामचंद्र ऐसा कहते हैं, किंतु रामचंद्र पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं भरोसा हो रहा?
सीता जी को त्याग दे दिया।
अरे अपने प्राण से भी प्यारी सीता जी को इतना कहने पर भी, और क्या किया वन में पड़ गया। बेचारी सीता जी रोती रही कलपती रही, समझे ये तो बड़ा जीती है, ये मानेंगे नहीं बात, इसलिए इनसे प्रार्थना करना भी बेकार है। रोती कलपती रह गई, कितने वर्षों वाल्मीकि के आश्रम में रह गई, किंतु उनको शरण लेकर के फिर से बुलाया नहीं। इसलिए डर लगता है रामचंद्र जी से, हम उनके चरणों में शरणागत हुए। मैंने भी यही सोचा, मैं पहले उन्हीं का भजन करता था, मैं डर गया, मैं डर गया कि कहीं उनको शरण में गया रख लेंगे और कुछ दिनों के बाद में हमारी कोई गलती हो जाएगी, अपराध उनके चरण में हो गया, और यदि कहा निकलो भागो यहाँ से, मैं क्या करूँ। इसलिए देखा कृष्ण ऐसे हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु, वो तो साधु बोलकर के ही ग्रहण कर लेते हैं और जन्म जन्मांतर में कभी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे दयालु हैं। ऐसे दयालु के श्री चरणों को छोड़ करके कौन दूसरे का भजन करे? चरणों कमलों में हम सभी लोग आते हैं, मथुरापुरी है, एक दिन आ रहा है जो कृष्ण के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। कब? परसों का दिन है, उस दिन ढलाव रूप से जो कुछ आप कहेंगे ना वो दे दें, और दिनों में तो कुछ दे न दे संदेह हो सकता है, किंतु उस दिन अपने आविर्भाव के आनंद में नंद बाबा की गोदी में यशोदा जी की गोदी में खेलेंगे। और एक विशेष और लालसा है, वो भी लालसा पूरी हो जाएगी 10-12 वर्षों में, इसलिए बड़े आनंदित उस दिन जो कुछ मांगेंगे ना वो सब कुछ दे। इसलिए आप लोग यही के चरण कमलों की सेवा, ब्रज में चरण कमलों की सेवा ये मांगे, और इससे भी अधिक कुछ है तो आप लोग समझ बूझ करके विचार करके मांग लेंगे, वो भी वो दे।
10-12 वर्ष में क्या पूरी हो जाएगी?
गौ प्रेमानंदे।